आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
SBS हिंदी पर आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर दलबीर अहलावत। डॉक्टर अहलावत ने सरकारों, यूनिवर्सिटियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ काम करते हुए दुनिया के कई हिस्से जैसे अमेरिका, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया में रणनीतिक और सुरक्षा मामलों पर शोध किया है, लेकिन भारत की सुरक्षा और भारत की सुरक्षा चुनौतियां उनका शोध क्षेत्र रहा है। हाल ही में जिस तरह की पाकिस्तान और भारत की तनाव की स्थिति रही है और फिर हमने चर्चाएं सुनी है कि किस तरह से युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ है, तो इस पर आज विस्तृत चर्चा के लिए हम डॉक्टर अहलावत से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अहलावत, आपका SBS हिंदी में स्वागत है।
धन्यवाद वैशाली जी।
तो डॉक्टर अहलावत, सबसे पहले तो हम ये समझना चाहते हैं कि अमेरिका की मध्यस्थता से किस तरह से ये युद्ध विराम अचानक से पा लिया गया है और क्या युद्ध विराम के जो इस उल्लंघन की बातें सामने आ रही हैं, क्या ये अपने आप में एक बड़ा खतरा है?
देखिए, मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड देता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स के वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस ने बोला था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अभी चल रहा है नन ऑफ आवर बिजनेस, इसमें हमें ज्यादा लेना देना नहीं है, हमारी स्टेक्स नहीं है। एक दिन बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्या है कि पोटेंशियल ऑफ रैंप, कि पाकिस्तान की एक आउट ऑफ वे जाके कुछ करना चाहता है। इसका मतलब इंटरप्रिटेशन पे है कि इसका मतलब क्या है। हम ये भी कह सकते हैं पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, शायद वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी यूज कर सकता है, लेकिन ये सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन है। लेकिन इससे थोड़ा सा और हमारे को क्लैरिटी मिलती है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं अमेरिका में मार्को रूबियो, उन्होंने कहा कि हमने पूरी रात बहुत मेहनत करके ये सीज फायर का जो हमने बैकग्राउंड तैयार की है, और इसके ऊपर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान सहमत हो गए हैं पूरी और एकदम से अभी सीज फायर के लिए, और अमेरिका ने मेडिएशन किया है इन बातों में, अमेरिका की ने मध्यस्थता की है। पाकिस्तान के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस थे, उन्होंने भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस को फोन किया 3:30 बजे और बोला कि पाकिस्तान सीज फायर चाहता है। उसके बाद पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अमेरिका का ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया, लेकिन भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री, उन्होंने कहा कि सीज फायर है ये दो देशों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक डील होगी। लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि जैसे ही ये अनाउंस हुआ उसके बाद में सीज फायर का वायलेशन हुआ, और इसमें दोनों देश एक दूसरे को ठहराते हैं कि दूसरे ने शुरू किया, लेकिन इसमें अभी तक जो एविडेंस दिखाई देता है, BBC का भी आप देखेंगे या वहां के चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट देखेंगे या और एविडेंस देखेंगे ऑडियो विजुअल, उसमें लगता है कि पाकिस्तान ने इसका सीज फायर का उल्लंघन किया है। अभी जो बेसिक जो अभी जो डाटा है उसके बेसिस पे ऐसा लगता है। लेकिन सवाल अहम ये उठता है कि ये सीज फायर एग्रीमेंट है क्या, क्या उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है। देखिए, अभी तक इस एग्रीमेंट में मैंने जो अभी तक कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखा है, इसमें सिर्फ दो ही बातें हैं। एक है इमीडिएट सीज फायर, तुरंत ये लड़ाई बंद होनी चाहिए, और दूसरा है जो आगे जो स्पाइरल है, जो लड़ाई आगे नहीं बढ़नी चाहिए, मिलिट्री ऑपरेशंस बंद होने चाहिए। इसके लिए आज 12 मई को भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच में बात होगी, उसके बाद वो उसके ऊपर सहमत होंगे। उसके बाद क्या होगा कि जो भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो बैठेंगे और एक डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट करेंगे। उस डॉक्यूमेंट में अलग अलग तरह की दोनों देश अपनी कंडीशंस लगाएंगे। भारत एक कि एक कंडीशन ये होगी कि जो यदि भारत में कोई भी उग्रवाद की कोई घटना हुई तो भारत उसको एन एक्ट ऑफ वॉर करेगा और उसके अगेंस्ट काइनेटिक एक्शन लेगा। सो इस तरह से सीज फायर तो भी हुआ है, उसका उल्लंघन भी हुआ है, लेकिन अभी तक सीज फायर की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं वो नहीं आई हैं, इसलिए स्थिति बड़ी ही अभी साफ नहीं है, क्लियर नहीं है।
तो डॉक्टर अहलावत, सबसे पहले तो बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की, कि किस तरह से भारत ने जो मिसाइलें पाकिस्तान के, उनकी भाषा में कहा जाए तो आतंकी ठिकानों पर मिसाइलों से अटैक किया, कहाँ तक वो जायज है और कितना उसको समझा जा सकता है सुरक्षा के नजरिए से?
भारत और पाकिस्तान के बीच में एक लंबी कहानी है जहाँ पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का के बारे में बोला जाता है, और इंडिया में अभी आप देखिए 2001 में पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ, 2008 में मुंबई में हुआ, 2016 में उरी और पठानकोट में हुआ, 2019 में पुलवामा में हुआ, अभी 2025 में पहलगाम में हुआ है। और ये पहलगाम का ये काफी महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहाँ पे जो टूरिस्ट थे उनको धर्म के बेसिस पे अलग किया, जो उसमें मेल थे, जो आदमी थे, उनको टारगेट किया गया। तो इससे ये बनता है कि पार्टिकुलर किसी उनका ऑब्जेक्टिव था कि किसको टारगेट करना है। तो इसके लिए दी रेजिस्टेंस फोर्स ने इमीडिएटली रेस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हमारा काम है, हालांकि उन्होंने बाद में इसको विड्रॉ कर लिया, लेकिन जो दी रेजिस्टेंस फोर्स है इसका एफिलिएशन लश्करी तैयबा से है। लश्करी तैयबा का ऑपरेशंस पाकिस्तान में है, वो पाकिस्तान की सॉइल से ऑपरेट करती है और इसके जो हेड है वो हाफिज मोहम्मद सईद हैं। इनका 2008 में जो मुंबई अटैक हुआ था उनमें भी इनका हाथ बताया जा। देश में बहुत ही एंगर था इंडिया में और गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर था, इसलिए सरकार ने टेररिज्म को एज एन एक्ट ऑफ वॉर लेते हुए ये स्ट्राइक्स की अक्रॉस दी बॉर्डर। लेकिन इसमें भारत सरकार का क्लियर ये था कि जो टारगेट्स हैं, जो नौ जगह पे जहां टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वहां पे ही टारगेट होगा, प्रिसाइज होगा, इसके बाद स्पाइरल इसका एक्सपेंशन नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान ना तो वो पाकिस्तान की मिलिट्री के अगेंस्ट कर रहे हैं ना पाकिस्तान की जनता के अगेंस्ट कर रहे हैं, जो उग्रवादी हैं उनके अगेंस्ट वो काम करेंगे, और इसलिए उन्होंने ये प्रिसाइज मिसाइल से अटैक किया है वो किया है। तो भारत का कहना है कि उनकी लड़ाई टेररिज्म से है, ना पाकिस्तान से है, ना पाकिस्तान की मिलिट्री से है, ना पाकिस्तान की जनता से।
इस समय भी जो भारत पाकिस्तान की सीमा है उस पर हालात तनावपूर्ण ही है, क्योंकि दोनों ही ओर से उल्लंघन की खबरें आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है कितना स्थिर है ये युद्ध विराम और आगे भविष्य की किस तरह से आपको चाल दिख रही है आज के हालात के अनुसार?
देखिए, इसमें क्या है कि जो भारत और पाकिस्तान 3,323 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं, इसमें से ज्यादातर बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो वहां पे ज्यादा नहीं है। जो मेन फोकस है वो 750 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल है, मेनली ये कश्मीर में है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल क्या था कि 1971 में जो वार हुआ था उसके बाद शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था 1972 में, और उसके बाद ये जो सीज फायर लाइन को ये लाइन ऑफ कंट्रोल बना दिया था। तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे ज्यादातर अभी शांति है। 2021 में दोनों देशों ने एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया था और 2021 से अभी 2025 तक दोनों देशों ने उसको मान्यता दी है, लेकिन जैसे अभी अटैक हुआ तो उसके बाद जो LOC है वो वोलेटाइल होगी। तो कुल मिला के इसमें कहने का ये है कि जो LOC के ऊपर दोनों देश अपना हक मानते कि हमें उस साइड में जा सकते हैं, जैसे कि अभी पाकिस्तान के जो COS हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुनीर जी, उन्होंने कहा अभी एक लेक्चर दिया था, और जो कि विदेशी पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस लेक्चर में उन्होंने का एक टू नेशन थ्योरी के ऊपर फोकस किया था कि मुस्लिम इस्लाम और हिंदुइज्म अलग अलग हैं, दे कभी भी इकट्ठे नहीं थे ना रह सकते। दूसरा उन्होंने एक और पॉइंट जो रेज किया था कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की जुगलर वेन है। तो ऐसी स्टेटमेंट से क्या हुआ कि एक इन्फ्लेशन हुआ कि LOC का तो ये रेस्पेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का इश्यू ला दिया और कश्मीर को पूरा को अपना हिस्सा मानते हैं, तो इसलिए जो LOC का है उन्होंने एक क्रेडिबिलिटी को ऊपर एक सवाल चिन्ह लगा दिया। तो एक ये वोलेटाइल सिचुएशन है।
तो आने वाला समय, और आखिरी यही मेरा आखिरी सवाल भी होगा कि किस तरह से आप देख रहे हैं, कहा जा रहा है जो अमेरिका ने मध्यस्थता की है, तो क्या थर्ड पार्टी इंटरवेंशन आपको लगता है भारत पाकिस्तान के रिश्तों में स्टेबिलिटी ला सकता है, स्थायित्व ला सकता है? क्योंकि पूर्व में या कहें कि इतिहास में ऐसी कोई भी इंटरवेंशन पहले सफल नहीं रही है।
इसमें एक बैकग्राउंड है जो भारत और पाकिस्तान के संबंध है कि इन्होंने 1972 में एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसको कहते हैं सिमला एग्रीमेंट, और इस एग्रीमेंट में स्पेसिफिक क्लॉजेस हैं जैसे कि दोनों देश पीसफुल एंड हार्मोनियस रिलेशंस रखेंगे, संबंध शांतिपूर्वक संबंध रखेंगे, एक दूसरे की जो टेरिटरी है उसका रेस्पेक्ट करेंगे, इंटरनल अफेयर्स में इंटरवेंशन नहीं करेंगे, और जो सबसे अहम क्लॉज है उसमें का है जो डिस्प्यूट्स हैं वो बायलेटरल लेवल पे करेंगे, दोनों द्विपक्षीय समझौता होगा, वो तीसरी पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। अभी जैसे कि अमेरिका ने मध्यस्थता की है, मध्यस्थता में क्या होता है टेक्निकली कि दोनों पार्टी एक थर्ड पार्टी के पास जाएं और बोले कि आप हमारी प्रॉब्लम को सोल्व कीजिए, तो उस हिसाब से यदि भारत ने लगता है, भारत से डिस्कशन जरूर हुआ है लेकिन भारत ने लगता है कि इन्वाइट नहीं किया अमेरिका को कि इसमें मध्यस्थता कीजिए, तो इसीलिए क्या है कि अभी दोनों कंट्री के बीच में ही आज 12 मई को एक मीटिंग होगी और उस मीटिंग में दोनों टर्म्स एंड कंडीशंस को आइडेंटिफाई करेंगे सीज फायर के लिए। एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, एग्रीमेंट में क्या क्या टर्म्स होंगी और वो टर्म्स को रेस्पेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे वो दोनों के ऊपर लगता है। और भारत के लिए अच्छी बात क्या है कि भारत ने ये एक्शन लेने से पहले सब देशों से बातचीत की, तो उसमें भारत को बहुत ही एक ज्यादा सपोर्ट मिली कि हर देश ने कहा कि हम उग्रवाद के विरुद्ध हैं, और पाकिस्तान को उस हिसाब से थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान के पास जो सपोर्ट आई वो टर्की, अजरबैजान और चाइना से ही आई है, लेकिन इसमें ये नहीं है कि पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है क्योंकि पाकिस्तान में भी टेररिज्म है और ये से फाइट कर रहा है, पाकिस्तान की भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, तो इसमें एक समाधान जो हो सकता है कि दोनों देश बैठ के ऐसा एग्रीमेंट साइन करे जो गुरुवाद है साउथ एशिया में या भारत पाकिस्तान में उसको वो मिलके फाइट कर, क्योंकि दोनों देशों के लोग शांति चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं, वो आपस में काफी चीजें कल्चर है, हिस्ट्री है, शेयर करते हैं, तो इसलिए यदि इस रीजन को पीसफुल और डेवलपमेंट देखनी है तो दोनों देशों को उग्रवाद के विरुद्ध मिलके लड़ाई लड़नी पड़ेगी।
डॉक्टर अहलावत, आपने इतना समय निकाला आज हमसे बात करने के लिए, उसके लिए बहुत शुक्रिया।
नहीं, आपको थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी और ये अच्छा लगे आपसे बात करके।
इस रिपोर्ट में दी गई जानकारी सामान्य है, SBS ना ही यहाँ प्रकट किए गए विचारों से सहमत है और ना ही असहमत।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।